نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير. شروع کریں گے آیت نمبر 187 سے سورة آل عمران تفسیر آیت 187 سے. ابھی تک ہم نے پیچھے یہود کے مختلف رویوں کو دیکھا, اب یہاں یہ بہت اہم آیت ہے جس میں اب ہم پہنچے. اس آیت میں آپ کو ایک نام دے دیتی ہوں ابھی سے تاکہ بعد میں بھی اگر آپ کو کبھی کوئی کسی کو ذکر کرنا ہو تو موقع یاد ہو. ہم میں سے بہت سارے لوگ وعدہ الست کی آیت جانتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھے رب مانو گے. اور قرآن پاک میں ہم بار بار اس بات کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ اگر ان کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو وہ ان کو مانیں گے. یاد ہے آپ کو پیچھے سورہ بقرہ میں, آگے سورہ مائدہ میں تو بہت ڈیٹیل سے آیتیں آنے والی ہیں. اب جو آیت ہے نا 187, اس میں اسی وعدے کا تذکرہ. آئیے دیکھتے ہیں, پھر انشاءاللہ ترجمے کے بعد مزید بات واضح ہوگی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. اور یاد کرو جب کہ اللہ نے ان لوگوں سے ایک قول و اقرار لیا تھا جن کو کتاب دی گئی. اہل کتاب کے کسی قول و اقرار کا تذکرہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. ان کو کیا کہا تھا, یہاں 1, 2, 3 لکھ لیجئے گا, آپ کو انشاءاللہ بھولیں گی نہیں یہ باتیں. نمبر ایک, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ, کہ تم ضرور اسے لوگوں کے سامنے واضح کرو گے. کس کو کرو گے؟ لکھئے تورات کو, اس کے حکم کو, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آیات کو. دوسری بات, وَلَا تَكْتُمُونَهُ, اور اسے چھپاؤ گے نہیں. یعنی ظاہر کرنا ہے, چھپانا نہیں ہے. کیا مطلب, کوئی فرق ہے؟ جی بالکل, ہاف ٹروتھس ہوتے ہیں نا, نہ بندہ ظاہر کرتا ہے نہ چھپاتا ہے. اس میں ایمفیسائز کیا گیا, زور دے دیا گیا کہ بیان بھی کرنا ہے اور چھپانا بھی نہیں. تو ظاہر ہے کہ جب آپ بیان کر دیں گے تو چھپے گی تو چیز نہیں, لیکن یہاں احساس دلانے کے لیے کہ تم اس کو ضرور ظاہر کرو گے. انہوں نے اس وعدے کے ساتھ کیا کیا, فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ, تو انہوں نے اس عہد کو پسے پشت ڈال دیا, یعنی پیچھے پھینک دیا. نبذا پیچھے بھی بات ہوئی تھی, نبیز لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے, گٹھلی کا پھینکنا ہے, یعنی کسی چیز کا ٹوٹنا یا پھینکنا, یہ چیز وہاں آتی ہے. اور بندہ کس چیز کو پھینکتا ہے؟ جس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, یعنی بے قدرہ کر دیا. عرب لوگ منبوز ایسے بچے کو کہتے ہیں جس کو راستے میں پھینک دیا گیا ہو, یعنی ولد الزنا. ایسے بچے جن کو کوئی نہیں رکھتا وہ پھر پھینک جاتے ہیں, اس کے لیے دیکھیے یہ لفظ آتا ہے. حقارت کے ساتھ توجہ کے قابل نہ سمجھنا, مراد یہ کہ کسی کام کو بیکار چھوڑ دینا, پھینکنا اور ڈالنا, کنارہ کش ہونا. نفس کہتے ہیں کھجور یا کشمش کو پانی میں ڈال کر ایک طرف چھوڑ دیں تاکہ وہ نبیس بن جائے. تو کیا کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا تھا اتنا خوبصورت, انہوں نے اس کو مانا نہیں بلکہ اس کو الٹا سلٹا کر دیا. اور وراء ظہورہم, پشتوں کے پیچھے, بیہائنڈ دیئر بیکس, یعنی لیسٹ پرائیورٹی. ظہور ظاہر سے, یعنی انہوں نے اس کی نہ تو مدد کی. دیکھیے ظاہرہ کا معنی مدد کرنا بھی ہوتا ہے نا, مظاہرے کا لفظ بھی آپ نے سنا ہوگا. اور ظاہر کہتے ہیں کسی چیز کے کھلے حصے کو, بیرونی. ظہر کا وقت ہوتا ہے, یہ دن کا بہت کھلا وقت ہوتا ہے نا, یعنی روشن وقت ہوتا ہے. اسی طرح سے اس کا اپوزٹ جو ہوتا ہے, اندرونی حصے کی ضد ہے یہ. بیسیکلی انسان کے جسم کا شانوں سے لے کے سیرنگ کے اوپر تک کا حصہ. آپ کہتے ہیں نا کمر دکھ رہی ہے, کہاں دکھ رہی, یہاں سے لے کے آپ کی بیک تک ہاف باڈی پوری ظاہر ہوتی ہے, کہیں بھی پین ہو سکتا ہے. اور آپ آج دیکھ لیجئے ڈاکٹرز میں کہ پورا اسپائنل کارڈ اس جگہ تک ہوتا ہے, برین سے لے کر کمر نیچے مہرے اس کے وہاں تک جاتے ہیں. عموماً ہمارے کلچر میں تو کمر وہی ہے نا جس کو لوگ ناپتے ہیں ظاہر, لیکن اصل میں اس کا مطلب پوری بیک, پشت جس کے اندر ہے. اسی طرح سواری کو بھی ظاہر کہتے ہیں, مالِ کثیر کو بھی کہتے ہیں. پھر اسی طرح اس کے اور بہت خوبصورت لفظ ہے لیکن یہاں اتنا ہی کافی ہے. پھینک دیا انہوں نے اس کو پیچھے, وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا, اور اس کی بڑی حقیر سی قیمت حاصل کر لی, یعنی اس کی بڑی حقیر سی قیمت وصول کر لی. فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ, تو بہت ہی بری چیز ہے جو اس کے بدلے میں وہ حاصل کر رہے ہیں. देखिए क्या दिया अल्लाह ने इनको और इन्होंने उसका अंजाम क्या किया। जब कौमों पे जवाल आता है ना तो वो अल्लाह के किए हुए वादों और अल्लाह ताला की दी हुई जिम्मेदारियों को इसी तरह निभाते हैं। क्या पता चला इस आयत का खुलासा क्या निकला? अल्लाह ने अहले किताब को उनकी किताबों को जाहिर करने और ना छुपाने का हुक्म दिया था, लेकिन उन्होंने उस कौम के साथ दो रवैये क्या अख्तियार किए? पसे पुश डाल दिया, फेंक दिया, तवज्जो के काबिल ना समझा और लीस्ट समझा। और ये चीज़ तो इनकी किताबों के रिकॉर्ड में मौजूद है कि तौरात का आम लोगों तक रहना पहुंचना ये जुर्म था, सिर्फ उस दौर के मजहबी रहनुमा के पास होती थी जो बादशाह के इर्द गिर्द किसी चैपल में बैठता था। जब कहीं कोई मौका पड़ता तो वो जाकर अंदर देखता कि इस मौके पे तौरात में क्या हुक्म है। हत्ता के बादशाह तक को भी उधर जाने की इजाजत नहीं थी। तभी तो फिर उनके उलमा को पैसे देकर फतवे खरीदना और फतवा फरोशी या कह लीजिए कि उनके हाथ गर्म करके मसलों को चेंज कराना आसान हो गया। आज आप देखिए कि कुरान कितना खूबसूरत है, लाखों में छपता है, करोड़ों में छपता है। एक वीडियो थी जिसमें कुरान छपने वाली जो फैक्ट्री है उसकी तस्वीरें थी, तो मुझे उसको देखते हुए रोना आ गया कि मैं सोच रही थी कि जब मेरे आपके हाथ में आता है उससे पहले ये कितने हाथों से गुजरता है। इतना कॉमन है कुरान लेकिन बंद है। आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि हमारे पास कुरान मौजूद है, हमारे एक एक के घर में 10-10 नुस्खे होंगे, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, कभी सुपारों की शक्ल में, और अब तो हमारे आईफोन और ऐप्स और एक एक फोन के अंदर 10-10 किस्म के टेक्स्ट मौजूद हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमारी उम्मत की गुमराही का हाल देखिए, वजह क्या? समझ नहीं आती, बंद किताब की रिस्पेक्ट करते हैं, इसको कोई मानी और मफहूम के साथ लेना नहीं चाहते। तो जरा आप उस कौम का हाल सोचिए जिसके लिए अल्लाह ताला कहते हैं वह नबजू हो राज हो रही है। आज हम मुसलमान कितने गए गुजरे क्यों ना हो गए, कुरान को पसे पुछ नहीं फेंकते, पीछा नहीं करते, गिर जाए तो उसके वजन काटा दे के लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं। तो कीमत कैसी ली? थोड़ी दुनिया के थोड़े फायदे ले लिए। जब अल्लाह की किताबों को इस तरह से दुनिया की कीमत के लिए डाल दिया जाता है तो याद रखें कि वो दीन की वैल्यू जो है वो लोगों की नजरों में 2% की रह जाती है। मेरे आपके लिए इसमें क्या दर्स है? किताब को आम करें। ये दो लफ्ज जो ना ये आज अपने ऊपर ले लें, भूल जाए अहले किताब को। ये तो थोड़ी थोड़ी बातें हमने समझ नहीं थी ना आयत के साथ, तुम लेते ही हैं। ये अहले किताब की बातें हो गई, मिसाक था, भारी वादा था, मिसाक आपको तवसक से बहुत भारी जिम्मेदारी, बड़े बसूख से बात की जा रही है। कल उनको दी थी तो रात और इंजिल को नहीं छुपाओगे, आज मुझे आपको नहीं दी। लतुबैयिनुन न हो कि आज हमें कुरान के लिए नहीं ये कहा गया। क्या ये सिर्फ उलमा की किताब है? आज आप देखिए आम लोग पढ़े लोग कहते हैं गुना है, औरतें पढ़े कहते हैं बिल्कुल जायज नहीं है। और इसी तरह से इसमें ये जो सारे हु के जमीर है ना, ये नबी सल्लम की तरफ भी आते हैं। ये आयत इनको मजबूर कर रही है कि ये मुसलमान हो। आज के ज्यूस क्रिश्चियंस को आप ये आयत दिखाएं कि देखे ये आपकी किताबों में लिखा हुआ था कि नबी सल्लम की आमद के तस्करे और उन आयतों को ना छुपाएं। और ये मैं नहीं कह रही, सईद बिन जुबैर बहुत बड़े मुफस्सिर हैं, वो कहते हैं कि हु से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और एक ही बात है, नबी सल्लम को जाहिर कर देते तो दीन खुद ही खुल जाना था। वो आपको छुपाते भी तो इसीलिए थे ना कि वो इनकी खयानतों को पीछे ले जाएंगे। आज उम्मत के लिए इसमें सबक है, हदीस से ही आपको पता चल जाएगा। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, नबी सल्लम ने फरमाया जिससे इल्मे दीन का कोई मसला पूछा गया और जानबूझकर उस मसले को ना बताया तो क्यामत के दिन वो शख्स आग की लगाम दिया जाएगा। यह वो दौद की रिवायत है 3658। अच्छा तो फिर अब हम सारा आकर शुरू रहे मसले बताने। देखिए शुक्र किया करें कोई आपसे नहीं पूछता, यहाँ सवाल के कोई पूछे। और दूसरी बात, आपको पता तो हो हर वक्त फतवे देना जवाब देना ये दुरुस्त चीज नहीं होती। इतना खौफजदा होता है इंसान एक चीज के बारे में कि उसको बार बार पूछने के बाद दोबारा भी इस चीज का नहीं होता। एक मैं छोटा सा आर्टिकल पढ़ रही थी कि गालिबन इमाम शाफी के पास कोई शख्स आया और उसने आकर सवाल किया अपनी बीवी के बारे में। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, इधर ही है मेरे पास, आज ही सुबह मेरी नजर पड़ी कि कितने मुख्तात होते थे हमारे असलाफ दूसरों को दीन के बारे में कोई बात कहते और सुनते, और हम तो रात जाते मुफ्ती, वो ऐसा फुला ऐसा, हम तो किसी को काफिर कह दें, किसी को जहन्नमी कह दें, हमारे लिए कोई बड़ी बात ही नहीं है। مدینہ منورہ میں اس وقت کے سب سے بڑے محدث شیخ عبد المحسن عباد جو 88 سال سے مدینہ منورہ میں عوام ہوئی کو نہیں بلکہ علماء کو حدیث پڑھا رہے ہیں، ان سے ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا کہ شیخ یہ بتائیے، اب سوال سنیے اور آپ دیکھیں کہ ہماری محفلوں میں ایسے کئی فتوے چل رہے ہوتے ہیں، آنٹیاں ہی دے رہی ہوتی ہیں جواب، باقیوں کو تو کیا دینا ہے. ان کا سوال کیا تھا، میری بیوی 5 ماہ کی حاملہ ہے اور ڈاکٹر اس کی کمزوری کی وجہ سے حمل گرانے کا کہہ رہے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ سوال سمجھ آ گیا، 5 ماہ کا حمل ہے اور کیا وہ بچے کو ابارٹ کرا دے؟ اب شیخ کون ہے جو استادوں کو پڑھاتا ہے، عالموں کو پڑھانے والا استاد، سن کر کہنے لگے لادری میں نہیں جانتا. پوچھنے والے کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے بڑے شیخ ہیں اور کیا فرما رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا. اگلے دن اس نے پھر الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ وہی سوال کیا تو شیخ نے پھر وہی جواب دیا لادری، اب تو اور بھی تعجب میں بڑھ گیا. تیسرے دن پھر پوچھا، شیخ نے وہی جواب دیا، اب تو اس سے رہا نہ گیا، وہ پھٹ ہی پڑا، شیخ آپ مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ شیخ فرمانے لگے، اب سنیے، دیکھیں کہ ہم تو فوراً ابھی ہمارے میں سے کئیوں کی گردنیں ہل گئی تھیں کہ ہاں ہو سکتا ہے کسی نے کہا نہیں کچھ نہیں. وہ اتنے محتاط ہوتے تھے کہ پہاڑ ان کے سامنے سے گزر جب وہ ہلتے نہیں تھے اپنی جگہ سے. کہنے لگے، شیخ فرمانے لگے کہ اس کا بوجھ قیامت کے دن میں اٹھا نہیں سکتا، اس لیے جواب نہیں دے رہا. اگر میں حمل گرانے سے روک دوں اور عورت میں چونکہ اس کی قوت نہیں اور اس کی وجہ سے وہ مر جائے تو اس عورت کا خون میری گردن پر ہوگا، اور اگر میں حمل گرانے کا کہہ دوں اور اس بچے کا خون میری گردن پہ ہوگا، میں کہاں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے گناہوں کے ساتھ ان کے خون بھی اپنی گردن پر لاد لوں. یہ دیکھیے احتیاط کا تقاضا تھا. تو عام ہر وقت نہیں بولنا، شکر کریں ہم عالم نہیں ہیں، مت کوئی کہے ہمیں عالم، نہ سمجھے ہمیں کو عالم، ہم کو چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہم استاد نہیں بنتے، ہم طالب علم، ٹھیک ہے ہم علم سیکھنے والے ہیں، سکھانے والے نہیں بننا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور یقین کریں لوگ آج ذرا سا نہیں سوچتے، کینچی بھی شاید آرام سے چلاتے ہوں گے، زبان اس سے بھی تیزی سے چلا دیتے ہیں. تو جب مسئلہ پتہ ہو، جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کتنے پانی میں، پتہ ہو تو پھر بولیں ورنہ نہ بولیں. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن پاک میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی ایک حدیث بھی بیان نہیں کرتا. پھر یہ آیت پڑھی کہ جو اللہ کی آیت نازل کرتا دلیل اور آیتوں کو چھپاتے ہیں، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں وہ آیت. اور آخر تک واقعہ یہ کہ ہمارے مہاجرین بھائی تو بازار کی خرید و فروخت میں لگے رہتے تھے اور انصار بھائی اپنی جائیدادوں میں مصروف تھے، اور ابو ہریرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی بھر کر رہتا تاکہ آپ کی رفاقت میں شکم پوری سے بھی بے فکری رہے، اور ان مجلسوں میں حاضر رہتا جن مجلسوں میں دوسرے نہ حاضر ہوتے، اور وہ باتیں محفوظ رکھتا جو دوسرے محفوظ نہیں کر سکتے تھے. بخاری کی روایت ہے. صرف 3 سال رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، خیبر میں آئے تھے سن 7 ہجری میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 3 سال رہ کر ابو ہریرہ امام الحدیث کیسے بنے، یہ تھی جو باتیں. سارا دن ساتھ رہتے تھے، کہہ رہے پیٹ بھی بھرنے کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ کہیں بازاروں میں نہ چل. انہوں نے شادی نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، کیونکہ میں کہیں گھر میں اور بیوی بچوں میں مصروف ہو گیا تو میں علم نہیں لوں گا. اور دیکھیے پھر کوالٹی ٹائم گزارا، 3 سال ایک معمولی وقت ہوتا ہے 25-30 سال کی نسبت، لوگوں نے تو 40-40 سال بھی گزارے ساتھ. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں محفلوں میں نہیں بھی، میں ادھر فوکس تھا. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب انسان فوکسڈ ہوتا ہے نا تو اس کو علم کی بھی بہترین چیز جو ہے وہ ملنے لگتی ہے. پھر اسی طرح ابو ذر کہتے ہیں کہ اگر تم اس پر تلوار رکھ دو اور اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا اور مجھے گمان ہو کہ میں نے نبی سے جو ایک کلمہ سنا ہے گردن کٹنے سے پہلے بیان کر سکوں گا تو یقیناً میں اسے بیان کر دوں گا. یہ بھی بخاری کی روایت ہے. تو اس وجہ سے چھپا لینا کہ اب اپنا عمل نہیں ہے، یہ خیانت ہے. ہاں لوگ کہیں گے پھر اچھا ایسا ہے، مثلا میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اور سود کی آیت آ جائے تو میں کہوں میں تو خود اس میں انوالو ہوں، پھر لوگ مجھ سے سوال پوچھیں گے تو میں اس کو چھپا لوں، یہ جرم ہے. کوئی عمل میرا اپنا نہیں ہے، میں اس کو گول مول کر دوں، ہاں بس ٹھیک تو ہے لیکن پھر چلے چلے پھر آگے چلتے ہیں، یہ چھپانا ہے. اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہیں دنیا کا تھوڑا فائدہ لے لینا اور ایسی چیزوں کو لینا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا کے رکھے. ہر دور میں اس کے مختلف طور طریقے ہوتے ہیں، صرف شہرت لے لینا ہی بہت ہے، فیم ہو جانا، میڈیا پہ آنا، کتنے آپ کے لائکس ہیں، کتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں. اور ایسے لوگوں کے اندر ایک اور علت ہوتی ہے، ایک اور بیماری جس کا اگلی آیت میں ذکر آ رہا ہے، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا. आप इन लोगों को हरगिज ख्याल न करें जो खुश होते हैं इन कामों पर जो इन्होंने किए और चाहते हैं कि उन पर भी इनकी तारीफ की जाए जो इन्होंने नहीं किए। चुनाचे आप इन्हें अजाब में निकलने से कामयाब हरगिज भी ख्याल न करें, वलहुम अजाबुन अलीम और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये हैं वो लोग जो करते कराते कुछ नहीं और चाहते कहें कि तारीफें हमारी सबसे ज्यादा हों। शान नजूल सुन लीजिए इस आयत का तो बात समझ आ जाएगी। अबू सईद से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मुनाफिकीन में बाज ऐसे थे जो गजवे के लिए निकले तो पीछे रह गए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बैठ जाने से खुश हुए, जब आप वापस तशरीफ लाए तो उन्होंने आपसे माजरत की और कसम उठाई और उन्होंने इस बात को पसंद किया कि उनकी तारीफ की जाए इस काम पर जो उन्होंने सर अंजाम भी नहीं दिए। इस पर आयत ला तहसबन्नल्लज़ीन नाज़िल हुई कि अपने किए पर खुश होने वाले लोग मत गुमान करें जो पसंद करते हैं इस बात को कि उनकी तारीफ की जाए उन कामों पर भी जो उन्होंने नहीं किए। ये मुस्लिम की रिवायत है। कुछ लोग होते हैं ना वो कहते नहीं हमारी इस पर भी तारीफ करें कि हम नहीं कर सकते क्योंकि मजबूर बहुत है, हमारी मजबूरियों के तस्करे करें, नहीं हमारे साथ हमदर्दियाँ करें, हमारे हाल पे लोगों के साथ कहें कि हाँ वो तो बहुत करना चाहती हैं बस उनके मजबूरियाँ बड़ी हैं, वो बीमार बहुत हैं, वो परेशान बहुत हैं, वो दुखी बहुत हैं, उनके बच्चे बहुत तंग करते हैं, उनके बच्चे बड़े छोटे हैं, उनके बच्चे बड़े हैं, उनकी बेटियाँ शादी के काबिल है, ये चाहते हैं कुछ लोग। काम करके तारीफ चाहना ये पसंदीदा नहीं है, ये जुमला लिखिएगा, काम करके पूरे इखलास से पूरी कुर्बानियों से हिजरतों से फिर भी तारीफ चाहना पसंदीदा नहीं है, कहा ना करना और तारीफें करना। वो कहते हैं ना कि बनाए बहू और नाम बेटी का ले आओ, ये बेटी ने बनाया, बहुएं बेचारी किचन में काम करती हैं और सास जो है वो अपनी बेटियों के गुनगाती रहे, ये दुरुस्त तरीका नहीं है। हुमैयद बिन अब्दुल रहमान कहते हैं मेरवान ने अपने चौकीदार राफे से कहा तुम इब्ने अब्बास के पास जाओ और इनसे कहो अगर हर शख्स को अजाब दिया गया जो खुश होता है इस पर जो दिया जाता है और जो इसने नहीं किया इस पर वो तारीफ पसंद करता है फिर तुम सारे ही अजाब में मुबतला होंगे। यानी मुराद यह है कि अंदर से ही हर इंसान चाहता है कि उसकी तारीफ हो। तो इब्ने अब्बास कहने लगे तुम्हारा इस आयत से क्या ताल्लुक, यह आयत तो अहले किताब के बारे में नाजिल हुई है। तो हर बंदा अपना मुहासबा करे, मुझे आपको अपने आप को देखना है क्या हम पीछे रहते हैं। बुखारी की रिवायत है अबू सईद खुदरी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसे मुनाफिक मौजूद थे जो गजवात में और जिहाद में पीछे रह जाते थे, खुश रहते थे, लेकिन जब आप वापस आते तो उजर बयान करते और कस्में खाते, बल्कि इनको ऐसे काम पर तारीफ पसंद आती जो उन्होंने नहीं किए होते और बाद में चिकनी चुपड़ी बातों से अपनी बात बनाना चाहते। इस पर रियायत नाजिल हुई। ये बुखारी की रिवायत है 4567 नंबर की। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि ऐसे गिरोह से हमें ना करे, खुश आमद दिखावा रियाकारी। मैंने अभी स्ट्रिप में एक पूरी बुक पढ़ानी है इखलास के समरात और रियाकारी के नुकसानात, कि क्या इंसान को रियाकारी डस्ती है और इंसान अपने आप को पता नहीं क्या कुछ लेके जाता है। यहाँ देखिए लफ्ज़ बी मफाजा का लफ्ज़ आप देख लीजिए नया है, कल वाले ही लफ्ज़ है जो फाइज पे बात हुई थी, किसी मुसीबत से छुटकारा पाना। और मुफाजा जो है ना ये सुपरलेटिव डिग्री है फाइज की, फाइजा फौज फाइजून जो हमने काफी डिटेल से बात की। तो यह मुराद है कि कोई इनके बचने की उम्मीद ही नहीं की जा सकती, जिसको उर्दू में छुटकारा कहते हैं ना बस वही लफ्ज है बी मुफाजतिन, कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला बिल्कुल भी किसी जगह से नहीं बचाएगा। बाज़ कहते हैं इसके ऊपर अली आयत से भी ताल्लुक है कि इनको कहा था अपने दीन को जाहिर करो और छुपाना नहीं, लेकिन इन्होंने वो तो नहीं किया लेकिन अपनी तारीफें चाहते हैं। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। तो रियाकारी और शोहरत से बचना है, ये इस आयत का खुलासा है। और साथ ही साथ अपनी मर्जी से मसले नहीं बयान करने, और जिसने मालदार होने के बावजूद झूठा दावा किया उसे कमी नसीब होगी। यानी बात लोग होते हैं उनके पास कम माल होता है तो शो ऑफ ज्यादा करते हैं, ये भी इसमें आता है। इल्म कम होता है फिर भी शो ऑफ करते हैं। एक मैंने रिवायत सुनी खौफ जदा हुई बहुत ज्यादा, कि आज तो हर बंदे को अपने आप को अलामा और आलिम और न जाने क्या कहलाने का शौक है। तो उन्होंने कहा कि जो बंदा अंदर से नहीं होता अगर वो जाहिर कराता है लोगों को तो उसके ऊपर बहुत बड़ी वही थी। एग्जैक्ट लफ्ज मुझे इस वक्त याद नहीं इसलिए कोट नहीं कर रही। यानी आपके अंदर गुण कोई नहीं, आप चार लफ्ज पढ़ के अपने आप को आलिम कहने लग जाए और स्कॉलर और मुफ्ती और पता नहीं क्या क्या आपके नाम के साथ डिग्रियां लगाने लग जाए, सारी दुनिया भी आपको आलिम मुफ्ती कहने भी लग जाएगी तो आपको क्या मिलेगा अगर आप असल में नहीं है। देखिए ना अगर डॉक्टर साहब कहना शुरू हो जाए लोग डॉक्टर साहब कह कह के उस बंदे को जिसने कभी मेडिकल कॉलेज का रुख भी नहीं किया, तो आप बताइए कि उससे फायदा क्या होगा, क्या किसी एक बंदे की वो जान बचा सकता है, किसी एक बंदे का इलाज कर सकता है। तो ये कहा करे कि अल्लाह हमसे इलाज करवा ले, हम लोगों की सलाह कर दे, अल्लाह हमें तो मोहसिन बना दे, हमें लोगों के मददगार कर दे, हमें कोई भी ना जाने, मुझे तो कोई ना जाने, बस मुझे नहीं किसी को नजरों में आना। आप देखेंगे जितनी बेनियाजी आती जाएगी उतनी बरकत ज्यादा आएगी। सहाबा कराम में कुछ ऐसे थे कि मुंह पे पटके डाल के, कप मुंह छुपा के, ढांटे बांध के जाते थे मैदान जंग में कि किसी को पता ना चले ये बहादुरी के जौहर हमने दिखाए हैं। उतनी वो बात उनकी शोहरत का जरिया बन गई और लोगों को उनके इखलास का पता चल गया। तो जो छुपाता है ना उसका छुपता नहीं है, लिख ले, और जो जाहिर करता है ना वो झूठा पड़ता है। और लोग कहते हैं देखो साफ पता चल रहा है ये शेखियां मार रहा है। अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया जो कि अपने बारे में झूठा दावा करे ताकि लोगों के सामने बड़ा बने तो अल्लाह इसका वक्कार घटा देता है, इज्जत नहीं रहती ऐसे शख्स में। फरमाया जो शख्स किसी ऐसी खूबी का दावा करे जो अल्लाह ने उसे नहीं दी वो झूठ और फरेब के दो कपड़े पहने हुए की तरह है। ये मुस्लिम की रिवायत है। जरा सी चाल देखा करे, अक्कड़ देखे, कोई एक आयत नहीं सीधी पढ़नी आती। अल्लाह की कसम मैंने कई ऐसे लोगों की बातें सुनी जिनको लोग यानी बड़े बड़े मेंबर्स पे खड़ा कर देते हैं, बाज दफा उनको साहब के लाख के भी देने लगते हैं, शायद ही कोई आयत भी सीधी पढ़ सके। आयतें गलत, हदीस से मरोड़ तरोड़ के, कॉल को हदीस, हदीस को आयत, आयत को ये कुछ कह रहे होते और सारे हम जैसे बैठे होते हैं जो सर धुन रहे होते हैं। कोई किताब सफा इधर से ढूंढ रहे हैं, वो नहीं मिल रहा था, पीछे पढ़ रहे, देख के पढ़ रहे, ढूंढ रहे, कोई बात दिल में नहीं उतर रही होती। अल्लाह जानता है कि बात का असर ही खत्म हो जाता है जब बंदा सिर्फ इधर उधर से चीजें उठा के लेके आता है। लेकिन शौक है कि हमारा नाम हमें आता करना, हम भी कर सकते हैं। फायदा लेने की बजाय फायदा देने की ख्वाहिश होती है चाहे वो चीज पास ही ना हो। तो हमेशा याद रखिए जितना आपके अंदर है ना उसको अंदर कंटेन करें, बाहर थोड़ा जाहिर करें। अंदर भर जाएगा ना खुद ही बाहर आएगा। ये कभी नहीं हो सकता कि प्याला भर जाए और बाहर चाय ना गिरे। अंदर पहले भरें, शोहियां मत बिगाड़ें, बड़ी बड़ी हदीसें और आधे आधे जुमले ना बताएं। और आप सबको भी नसीहत करूंगी, कहीं बैठते हैं, आपने भी उस पिछले जो बकरा की तकमील का प्रोग्राम था उसमें आप में से कुछ लोगों ने शेयरिंग्स की तो मैंने उसमें कई पॉइंट्स नोट किए हुए हैं आप लोगों के लिए कि ये चीज़ें आपकी इसलाह की ज़रूरत है। क्योंकि आप देखिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए बंदे को, लेकिन कम से कम हमारा कुरान और हदीस कोट करते वक्त बहुत शरह सदर होना चाहिए। क्योंकि आज हमारा दीन यही तो है, हर चौथा मैसेज तो उल्टा पुल्टा होता है, ना हदीस ना हवाला। इसको आगे कर दें, किधर कर दें। एक मुझे किसी ने दुआ भेजी, मुझे ठीक भी लगी, मैंने सुनी भी हदीस, लेकिन उसके अंदर जहां उन्होंने ये लफ्ज बोले ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इस दुआ को आगे करेगा और बहुत सारे लोगों को भेजेगा उसको ये अदर, और फिर तो मेरे कान खड़े हो गए। क्योंकि ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई पता था कि ये व्हाट्सएप पे हदीस जानी है बाद में, तो मैंने फिर कान लगा के सुने, उन्होंने एंड तक कोई रेफरेंस नहीं दिया, मैंने फौरन डिलीट कर दिया। हालांकि वो दुआ ठीक थी पर ये हदीस का अंदाज भी ठीक नहीं था और उसमें रेफरेंस नहीं था। तो मैं किसी को आगे करने चाह रही थी लेकिन मैंने नहीं की। क्यों मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी लूं? मैं नहीं करूंगी तो मैं गुनाहगार नहीं हूं, लेकिन मैंने गलत चीज कर दी तो गुनाहगार होगी। तो हमेशा जो है अंदर वो बन के दिखाइए, दूसरों की नजरों में झूठी इज्जत ना बनाए। इंशाल्लाह ताला जो सच होगा वो खुल के आ जाएगा। साबित बिन कैस अल्लाह के नबी के पास आए, कहने लगे अल्लाह के नबी मुझे तो अपनी हलाकत का बड़ा अंदेशा है। आपने फरमाया क्यों? जवाब दिया एक तो इस वजह से कि अल्लाह ने इस बात से रोका है कि जो ना किया हो इस पर तारीफ को पसंद करें, और मेरा हाल है कि मैं तारीफ पसंद करता हूँ। नोट करें ये सच बोलते थे, कई लोग तारीफ पसंद होंगे, हम में से भी होंगे। कुछ तो खुशामद पसंद होते हैं, कुछ चापलूसी, कुछ को तारीफें बड़ी अच्छी लगती हैं। तारीफ करते जाओ उनके अंदर चाबी भरती जाती है, चाबी भरती जाती है। जरा तारीफ छोड़ते वो कहते मोटिवेशन ही नहीं रहा, कोई बुलाता ही नहीं, कोई तारीफ ही नहीं करता, कोई हमारी चीज़ों को एडमायर ही नहीं किया जाता। सबसे बड़ा मोटिवेशन तो आपके अंदर से उठता है, वो तो ईमान है, वो कहीं नहीं आपकी जान छोड़ेगा। आप रात को बिस्तर में से भी उठ उठ के बैठ जाएंगे, अंदर की चाबी चलती है। तो तारीफें करने लगे, कब तक मेरी आपकी तारीफें करेंगे? अब मैं इधर आऊँ और आपको कहूँ पहले मेरी तारीफें करें फिर मैं पढ़ाऊंगी, तो फिर मैं पढ़ा बैठी और आपका कुरान पूरा हो गया। तो इन्होंने कहा कि मुझे तो तारीफ अच्छी लगती है, और दूसरी बात यह है कि तकब्बुर से अल्लाह ने रोका और मैं तो जमाल को पसंद करता हूँ। तीसरे ये कि नबी की आवाज़ से बुलंद करना आवाज़ ममनू है, मेरी तो आवाज़ ऊंची है। अब आप सोचिए ये कौन है, नाम लिख लें आपको बाद में अफसोस होगा। साबित बिन कैस कितना सच बोल रहे हैं अपने बारे में कि मुझे ब्यूटी अच्छी लगती है, मैं नफासत पसंद हूँ, मैं अच्छे कपड़े पहनता हूँ, तो फिर ये तो मुतकब्बिर हो गया मैं, आवाज़ मेरी बड़ी ऊंची है। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तू इस बात से खुश नहीं कि तेरी जिंदगी बेहतरीन और बाखैर हो और तेरी मौत शहादत की मौत हो और तू जन्नती बन जाए? खुश होकर कहने लगे क्यों नहीं अल्लाह के रसूल, ये तो बहुत अच्छी बात है। चुनाचे यही हुआ, आपकी जिंदगी इंतहाई अच्छी गुजरी और मौत शहादत की नसीब हुई। मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ मुसलमानों की जंग में आपने शहादत पाई। तो क्या पता चला कि वो ऐसे नहीं थे, वहम आता था दिल में लेकिन ऐसा नहीं है। तो बस अपने आप को अंदर बाहर से चेक करें, वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दि वल्लाहु अला कुल्ली शयइन कदीर, और अल्लाह ही के लिए है आसमानो जमीन की बादशाहत और वो सब कुछ जानता है। ये कहकर तो बिल्कुल एक इंसान के गुब्बारे में से हवा ही निकाल दी। अपने आप को पीछे कर लो, तुम कुछ नहीं हो, असल कुव्वत ताकत अल्लाह की। और ये आखिरी आयत जो है वो अगले रकू की बुनियाद बन रही है कि तुम तारीफें क्यों कराते हो, असल तारीफें उसकी करो, उसके गुनगाओ जिसने इस पूरी कायनात को बना दिया, और वो जो कुछ इंसानों को देता है उसमें उसका कमाल है।